नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक 21। ये अध्याय का संज्ञा है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। सृजन के मामले में हेतु कारण प्रकृति उच्यते कही जाती है। पुरुष जीवात्मा सुख दुखानां तथा दुख का भोक्तृत्व भोग में हेतु कारण उच्यते कहा जाता है। अनुवाद, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण है। अभी बोलिए मेरे साथ, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तात्पर्य जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियों हैं और ये सब प्रकृति जन्म है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये जोनियां मिलती हैं जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब इसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं होता, अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसे कोई वस्तु नहीं होती है। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। ये कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि ये शरीर इंद्रियों का कार्य है, इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। ये शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वो प्रकृति में वश में हो जाता है, वो प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। इस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वो उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। यदि वो कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, वो अन्यथा आचरण नहीं कर सकता है। यदि जीव को सुकर का शरीर प्राप्त होता है तो वो मल खाने तथा सुकर की भांति रहने के लिए पात्र है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है, लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। वेदों में मुंडक उपनिषद में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, द्वासुपर्णा सार्भुजा सखाया। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वो सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। ये 13 अध्याय में प्रकृति पुरुष और तथा चेतना का विश्लेषण हुआ है। भगवान स्वयं इस ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये कोई मामूली व्यक्ति का काल्पनिक धारणा नहीं है, ये परमेश्वर भगवान, ये प्रकृति क्या है, हम कौन हैं, कैसे हम इस भौतिक जगत में गिर गए और कैसे इस भौतिक जगत में हम ये शरीर के बंधन में और इस भौतिक जगत के बंधन में फंस गए, इसका वर्णन भगवान किए हैं। और भगवान बता रहे हैं कि कैसे हम इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर हमारा आध्यात्मिक स्थिति में, हमारा स्वाभाविक स्थिति में फिर वापस जा सकते हैं। ये भगवत गीता का ज्ञान है। इस श्लोक में वर्णन हुआ है कैसे हम इस भौतिक जगत में गिर जाते हैं और कैसे हम भौतिक जगत का बंधन में फंस जाते हैं। इस भौतिक जगत का बंधन का कारण क्या है? ये भौतिक जगत में हमारा ये बंधन का कारण है इंद्रिय सुख भोग की वासना। हम हमारे शरीर के द्वारा, ये शरीर में जो इंद्रियां हैं उसके द्वारा जब हम इस भौतिक जगत को भोग करना चाहते हैं तो हम इस भौतिक जगत को बंधन में फंस जाते हैं। हमें इस भौतिक जगत का बंधन मिलता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने शरीर के द्वारा, हमारे इंद्रिय के द्वारा भोग प्राप्त होने का इच्छा करते हैं, वासना करते हैं, तो उसका कार्य का जो फल है उस फल का भी हम भागी ला सकते हैं। हर कार्य का एक कारण, एक फल होता है। हर कार्य, चाहे वो काम भला हो या बुरा हो, हर कार्य का जो कुछ हम करते हैं उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। भला काम के परिणाम के रूप में हमें सुख मिलता है और बुरा काम, गलत काम के परिणाम के रूप में हमें दुख मिलता है, कष्ट। हम भोगना चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, परंतु हमारे कार्य के अनुसार हमें सुख और दुख दोनों मिलते हैं। हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, फिर भी हमें दुख मिलता है। कोई भी कोई क्या दुख प्राप्ति के वासना करता है, कोई की कोई चाहता है कि हमें कष्ट मिले, हमें दुख मिले, कोई भी नहीं चाहता। हर व्यक्ति सुख चाहता है, परंतु दुख ऐसे ही आता है। और हम देखते हैं सुख भी ऐसे ही आता है। हमारे कार्य के, हमारे प्रचेष्टा के कारण केवल सुख नहीं मिलता, सुख ऐसे नहीं आता। जैसे दुख बिना बुलाए आ जाता है, वैसे सुख भी बिना बुलाए ही आते रहे। कैसे आते रहेंगे? हमारे कार्य के परिणाम के रूप में। जैसे हम कार्य करते हैं, जैसे हम कार्य कर चुके हैं और जैसे हम कार्य करते रहेंगे, उसके मुताबिक या तो कभी कभी सुख मिलेगा और कभी दुख। तो सुख और दुख का कारण क्या है? सुख और दुख का कारण है हम। ऐसा नहीं कोई हमें सजा दे रहे हैं, कोई हमारा शत्रु है उसके कारण वो हमें सजा दे रहे हैं, नहीं। प्रकृति भी भगवान की तरह समदृष्टि है। भगवान का एक नाम है समदृष्टि। भगवान सबके प्रति समान रूप से दर्शन करते हैं। वैसे प्रकृति भी नहीं कहती है कि ये मेरा प्यारा है और ये मेरा प्यारा नहीं। प्रकृति न्यूट्रल, निरपेक्ष, और हमारे कार्य के अनुसार गुण और कर्म के फेर से हमें उसका फल प्रकृति प्रदान करती है। प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकारं निरुदात्मा कर्ताः इति। भगवद गीता में भगवान इसका विश्लेषण करते हुए ये बोले, भगवान बताए हैं कि ये प्रकृति में सब कुछ गुण और कर्म के अनुसार होता है, परंतु अहंकार निर्मूढ़ अहंकार के द्वारा विशेष रूप से मूढ़ बन जाने के कारण व्यक्ति सोचते हैं कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, परंतु असल में हम कुछ भी नहीं कर सकते, करने वाला हम नहीं है। सब कुछ हमारे कार्य की फल के रूप में, परिणाम के रूप में हमें प्राप्त होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु इच्छति। सुख और दुख भोग करने वाला पुरुष ही सुख और दुख का कारण है। आपको जब सुख मिलता है वो किस लिए मिल रहा है? कभी सुख मिलता है ना, तो सुख जब मिलता है तो क्या सोचना चाहिए? ये सुख का कारण आपका पहले जो काम आप कर चुके हैं उसके कारण, कोई भला काम किए होंगे उसी को सुख मिलता है। और कभी कभी जब दुख भी तो मिलता है ना, तो दुख का कारण भी कौन क्या है? दुख का कारण क्या है? आपका जो कर्म है, आप जैसे कार्य किए हैं उसके अनुसार आपको सुख और दुख मिलता है। कार्य और कारण का प्रकृति समस्त भौतिक कारण तथा कार्य या परिणाम के हेतु कर जाता है। प्रकृति है हेतु या कारण सारे कार्य और कारण का, और हमारे सुख और दुख का कारण हम खुद। ऐसा नहीं प्रकृति हमको, प्रकृति को हमारा शक्ल पसंद नहीं आता है तो उसके वक्त प्रकृति हमें कष्ट दे रही है, और दूसरे किसी को प्रकृति उसके बहुत प्रकृति को वो बहुत प्रकृति का बहुत प्यारे हैं इसलिए उसको सुख मिल रहा है, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने कार्य के अनुसार सुख या दुख भोग लेगा। तो आप सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। तो ये सुख दुख, ये दुख के जो मामला है इसको फैसला कैसे हम कर सकते हैं, इसका जो समाधान वो ये भी पूछ सकते। आप जैसे कार्य करते हैं उसलिए आपको सुख या दुख मिलता है। दुख आप नहीं चाहते हैं परंतु दुख मिल रहा है, सुख आप चाहते हैं पर बल्कि हर समय सुख भी नहीं मिलता। तो ये सुख दुख का जो ये है कारोबार है, इसको समाधान कैसे हो सकता है? इसका समाधान ऐसे हो सकता है कि सुख और दुख का कारण आप जो कार्य करते हैं उसके कारण आपको सुख और दुख। तो आप अगर अपने लिए कार्य न करके भगवान के लिए अगर कार्य करेंगे तो क्या होगा? तब ना तो सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा, परंतु क्या मिलेगा? भगवान के लिए कार्य करने से, भगवान के लिए कार्य करने से कार्य का जो परिणाम है, फल है, उसकी जिम्मेदारी आप नहीं, आपका नहीं रहता। तो उसका जिम्मेदारी भगवान, तो भगवान पर भगवान ले लेते हैं स्वयं। और आप जो कर्म का जो फल है वो कर्म फल का बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। और आपको जब सुख और दुख दोनों नहीं मिलता है तो फिर क्या मिलता है? सुख और दुख के पड़े क्या है? अच्छा, ये यहां तो और एक विचार हम थोड़ा करेंगे। दुख तो हमें पता है दुख क्या है, सुख क्या है पता है आपको? सुख क्या है? सुख का विश्लेषण ऐसे किया गया है कि जब दुख नहीं रहता है वो है सुख। दुख का निवृत्ति मतलब दुख जब खत्म हो जाता है, दुख जब नहीं रहता है वो है सुख। असल में ये भौतिक जगत में केवल दुख ही है, दुखालयम अश्वासम, ये जगह जो है, इस भौतिक जगत जो है ये दुख प्राप्ति के एक बहुत सुंदर जगह है। यहां हम सब क्यों आए हैं? यहां हम सब दुख प्राप्ति के लिए। सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा है, महाराज क्या कर रहे हैं? तो केवल दुख ही यहां मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। सुख कभी कभी मिलेगा, परंतु असल में ये जगह जो है ये केवल दुख प्राप्ति के लिए ही है। और ये शरीर जो है, ये शरीर दुख प्राप्ति के एक बहुत सुंदर मशीन है, एक बहुत सुंदर यंत्र है जिसके द्वारा हमको बहुत अच्छा रूप से दुख। अच्छा, आप इसका विश्लेषण मैं ऐसे करूंगा। आप सोचिए, आपका शरीर का कोई भी एक अंग, आपको उसके बारे में सोचिए। कोई भी अंग, जैसे एक शरीर का ये जो अंगली है, तो अब देखिए इस अंगली को आप कितने रूप से दुख दे सकते हैं। सोच सकते हैं कितने बार, कितने रूप से आप इस अंगली को दुख दे सकते हैं? लाइए थोड़ा सा आग, लाके आग लेके उसको जलाइए, क्या मिलेगा? एक चक्कू लेके इसको काटिए, कैसा लगेगा? कष्ट मिलेगा ना? और एक पत्थर लेके उसको मार के देखिए कैसा लगता है। तो दुख प्राप्ति के बहुत सारे तरीका हम सोच सकते हैं, परंतु आप सोचिए ये अंगली को दुख सुख आप कैसे दे सकते हैं? कोई सोच सकते हैं? मैं तो हजारों किस्म का दुख प्राप्ति के तरीका बता सकते हैं, परंतु सुख प्राप्ति के कोई भी तरीका आप बताइए, कोई बता सकते हैं क्या? क्या हो? आप सब सुख प्राप्ति के इतने पाने के लिए इतने कोशिश कर रहे हैं, परंतु आप बता नहीं सकते हैं कि अंगली को कैसे सुख मिल सकता है? कोई भी नहीं बताएंगे? अच्छा ठीक है, जो शर्माते हैं हाथ उठाए, और जो नहीं शर्माते हैं हाथ उठाए। कि ये जो शर्माते नहीं हो बताइए कैसे आप सुख दे सकते हैं। सुख नहीं मिलता है अगले को, ठीक है, तो उसका फैसला क्या हुआ? ये अंगली को हम बहुत तरह, बहुत रूप से इस अंगली को हम कष्ट दे सकते, परंतु इस अंगली को सुख। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो विचार है, ये आप शरीर, आपका शरीर का हर अंग प्रत्यंग पे प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी अंग को आप हजारों रूप से आकर्ष दे सकते हैं, परंतु सुख देना बहुत ही मुश्किल। तो आप बताइए, यह शरीर के सुख प्राप्ति के लिए है या दुख प्राप्ति के लिए? जोर से बताओ, दुख पाने। तो आप समझे हैं यह शरीर क्या है? दुखालयम अश्वाश्वतम, इस भौतिक जगत दुख प्राप्ति के जगह है, और ये शरीर दुख प्राप्ति के एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मशीन है। तो सुख और दुख, जब थोड़ा सा दुख का निवृत्ति होता है, दुख जब कम होता है, तो हम उसे सुख कहते। असल में दुख ही दुख ही, दुख का थोड़ा बहुत जब निवृत्ति होता है, तो उसको हम सुख कहते हैं। टेम्पररी सेसेशन ऑफ पेन इज हैप्पीनेस। थोड़ा बहुत जब कम हो जाता है दुख, तो हमें सुख कहते हैं। असल में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि दुख का पूर्ण रूप से निवृत्ति हो, है ना? आतंकी निवृत्ति हमारा जीवन का, हर व्यक्ति का जीवन का असल उद्देश्य है। आतंतिक, आतंतिक का मतलब क्या है? पूर्ण रूप से, पूर्णतया, पूर्णतया दुख का निवृत्ति ही जीवन का उद्देश्य है। तो ये पूर्णतया दुख की निवृत्ति कैसे हो सकता है, उसके बारे में भगवान गीता में वर्णन किए, विश्लेषण कैसे हम कर सकते हैं दुख का निवृत्ति। दुख निवृत्ति का उपाय है भगवान को शरण। हम जब भगवान को शरण ले लेते हैं, तो हमें और दुख नहीं मिलता। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है पाप। पाप का मतलब क्या है? जो काम नहीं करना चाहिए, बुरा काम, तो पाप का है। जब हम जो काम नहीं करना चाहिए, वो काम जब हम करते हैं, तो उसके परिणाम के रूप में हमें सजा मिलता है, दुख मिलता है। तो भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं? अहम त्वां सर्व पापी भ्यो। सर्व का मतलब समस्त, पापी भ्यो पापों से मोक्ष इच्छामि, मुक्त करो। जितना पाप तुम किए हो, केवल इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में भी जितने सारे पाप तुम किए हो, अगर तुम मेरा शरण ले लेते हो, तो सारे पापों का, सारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मोक्ष इच्छामि, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त करूं। तो आप बताइए, आप में से कौन दुख चाहते हैं? जो दुख चाहते हैं हाथ उठाए, नहीं, और जो सुख चाहते हैं हाथ उठाए। क्या हुआ? जो सही ढंग से सुख चाहते हैं, दो हाथ उठाए, बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। दो हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? हैंड्स अप का मतलब क्या होता है? सरेंडर, समर्पण। जब ऐसे भगवान के पास अपने आप को समर्पण करके जब भगवान को नाम, भगवान के महिमा कीर्तन करते हैं, तो भगवान आपको सारे पापों से, ये वाणी भगवान, ये प्रतिश्रुति भगवान इस भगवद गीता में दी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। पूर्ण रूप से तुम्हारे जितने सारे कार्य हैं, जो तुमको तुम सोचते हो तुम्हारा कर्तव्य कार्य है, वो सारे कार्य को छोड़कर जब तुम मेरे शरण ले लेते हो, तब मैं तुमको सातुमारे सारे पापों से मुक्त कर देता। तो अब बताइए आप क्या करना चाहिए? भगवान को शरण लेकर भगवान के नाम रूप ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उस महामंत्र को कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण, तो हम थोड़ा कीर्तन करेंगे आप। अब बोलिए सब, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम,